গোপী জানাবাল্লাভা গিরিবার ধারি যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরবন চারি যমুনা তীরবন চারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপী জনাবল্লভ গিরিবার ধারি জয় যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরবন চারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপী জনবল্লভ গিরিবার ধারি জয় যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরবন চারি যমুনা তীরবন চারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় রাধা গিরি ধরি রাধে জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় সুভদ্রা जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल प्रेमानंदे जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार जिकाचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार जिकाचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर भवति नष्टकी। हरे कृष्ण। इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में उपस्थित हुए सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करना ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। प्रभुपाद महाराज श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ होने के पहले ही आमुख मुख में ही लिखते हैं कि जिन्हें मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है और वो जिस समाज मानव समाज में रह रहे हैं तो मानव समाज को अपनी आवश्यकता के प्रति जागरूक होना चाहिए या उसको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है। वर्तमान समय में कलयुग के प्रभाव से आधुनिकीकरण विकास का विचार लेकर जो आज का समाज है, भले भौतिक सुख और सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है और बहुत सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं, प्रभुपाद महाराज ने लिखा है कि आज का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका एकीकरण हो गया है, अब बहुत दूरी नहीं रह गई, इतना विकास हो चुका है, इतने सुख साधनों का विकास और इतना आधुनिक विकास होने के बाद भी आज का हर मानव समाज शंकित है, सुशंकित है, शंकाशील है, भयभीत है। देखते हैं आधुनिक विकास के आश्रय में रहकर किस प्रकार समाज विनाश की ओर जा रहा है। जैसे हमने कुछ साल पहले आपने देखा होगा, एक बहुत बड़े विकसित देश ने एक धनी देश पर आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया, इराक को, और उसके राजा को भी फांसी दे दी गई। वह देश जो आधुनिक में विकास बहुत विकासशील था, और उसके बाद उस देश का ऐसा स्थिति हुआ कि आज वहां की प्रजा बहुत ही सुशंकाशील है, कहां से निकलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, कहां बम विस्फोट नहीं, आज वहां बिल्कुल अंधाधुंधीकरण फैला हुआ है उस देश में। इस प्रकार विकास के नाम पर किस प्रकार मानव जाति का विनाश हो रहा है, रूपा जी इसका उल्लेख करते हैं, विनाश आधुनिकरण का विकास। और अभी उस बात को तो वो तो विनाश की ओर है ही, वो तो देश पूरा सुशंकित है ही, अभी दूसरा देश ऐसा दावा कर रहा है कि हमने आधुनिकरण का विकास बहुत कर लिया, हमारे पास ऐसे ऐसे अनुबॉम हैं कि हम इन विकसित देशों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। और अब वो लंदन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को आंख दिखा रहा है, जैसे आपने सुना होगा ईरान, उसके पास बहुत आधुनिकरण सुविधा प्राप्त हो चुकी है, तब वो देश सुसंकित में पड़ गए हैं। तो कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी जो कहते हैं आधुनिकरण का विकास जो हमको विनाश की ओर ले जा रहा है, अर्थात मानव समाज को ये पता नहीं है कि हमारे जीवन का आवश्यकता क्या है, क्योंकि कलयुग के लोगों ने इस आधुनिकरण विकास के बहाने अपनी जो वास्तविक दृष्टि है उसको खो दिया है, वो अंधकार के गहन अंधकार में विघ्न हो रहे हैं। तो ऐसे में श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कलयुग के दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है, मानव समाज में सुख और शांति का संदेश दे सकता है। इसलिए आज के मानव समाज को श्रीमद् भागवतम की अत्यंत आवश्यकता है। इस बात को प्रभुपाद महाराज ने बहुत अच्छी तरह मननशील करके समझा, और इसको समझकर इस विश्व के मानव समाज के हित के लिए प्रभुपाद महाराज ने ये पूरी पूरी सारे विश्व में व्यवस्था की, जिससे प्रत्येक मनुष्य इसका आसानी से लाभ ले सके बिना कठिनाई के। कोई है, अब श्रीमद् भागवतम की प्रभुपाद महाराज के द्वारा ये व्यवस्था पूरे विश्व में है, अब व्यक्ति को जाकर सहजता से जाकर उसमें उपस्थित होना है, बस इतना मात्र करके वो अपने जीवन के परम लाभ को प्राप्त कर सकता है। ये व्यवस्था प्रभुपाद महाराज करके अब इसका मानव समाज कितना लाभ उठा रहा है, जो लाभ उठा रहे हैं वास्तव में वो परम सौभाग्यशाली हैं, वो परम लाभ उठा रहे हैं, ये उनका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि वे प्रभुपाद महाराज की कृपा का इस प्रकार लाभ उठा रहे हैं। तो पूरा विश्व इसलिए प्रभुपाद महाराज का ऋणी है कि उन्होंने मानव समाज के परम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परम साधन की व्यवस्था प्रदान की। अतएव यह विश्व प्रभुपाद महाराज के इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, अतएव हम प्रभुपाद महाराज के चरणों में आभार व्यक्त करते हुए और उनका ही आश्रय लेते हुए आइए हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9, ये जो नौवा स्कंद है ये विशेषकर सूर्यवंश की वंशावली का वर्णन इसमें आया है। सूर्यवंश में हुए राज ऋषियों का, महान पराक्रमी राजाओं का, परम भक्तों का इसमें चरित्र वर्णन है वंशावली का। और अंत में जाते जाते ये यदुवंश भी इसी वंश से एक अलग भाग पड़ता है, लेकिन वो भी इसी सूर्यवंश से ही अलग हुआ यदुवंश। तो इस प्रकार इसमें सूर्यवंश की वंशावली का वर्णन है। सूर्यवंश जो माता अदिति और कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्यदेव विवास्वान, जो आदित्य के नाम से भी जाने, अदिति के पुत्र होने के कारण उन्हें आदित्य भी कहते हैं, ये सूर्यदेव विवास्वान जिनकी पत्नी संज्ञा विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। संज्ञा कोई जानता है? संज्ञा भी। और उन व्यासवान और संज्ञा के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, और उन्हीं मनु महाराज श्राद्धदेव के पुत्र हुए इश्वाकु, जिससे आप सब विदित हैं, इश्वाकु जी, जिसका श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान उल्लेख करते हैं कि इस गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवास्वान को दिया, विवास्वान ने अपने पुत्र इश्वाकु को दिया। तो ये इश्वाकु और इसी वंश में आगे जाकर वंशावली का वर्णन करते हुए यहाँ तक आते हैं। और ये स्कंद 9 अध्याय 3, सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह प्रसंग आता है। इसी कुल में और भी कई भक्तों का वर्णन आएगा। इसी में जो आज का वर्णन है, शयाति जिनके तीन पुत्र हुए उतान बही, आनर्त और भूरिसेन। और आनर्त के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रेवत था, जिनसे आप सब विदित हैं। और रेवत के 100 पुत्र हुए जिसमें जो सबसे बड़े थे ककुग्गी हैं, और उन्हीं ककुग्गी की पुत्री रेवती थी, जो ब्रह्मा जी के आदेश पर, ब्रह्मा जी के सलाह पर उन्हीं रेवती जी का विवाह बलराम जी से हुआ। ये भी सूर्यवंश की कन्या है। तो कहाँ रेवती कहा जाता है, या कभी कभी हम यही कहते हैं कि महाराज रेवत की पुत्री। रेवत की पुत्री वो रेवत की पौत्री है। रेवत के पुत्र 100 हुए, उनमें सबसे बड़े ककुग्गी थे, उनकी पुत्री रेवती है। लेकिन बहुत स्थानों पर कभी कभी पुत्र को पिता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जब बलि महाराज भगवान वामन देव को 3 पद भूमि देने का वचन दे रहे थे, तो शुक्राचार्य उनको संबोधित करते होते हैं, हे विरोचन, हे बलि नहीं कहते हैं, हे विरोचन, अर्थात विरोचन सुत नहीं कहते हैं, हे विरोचन या विरोचन के पुत्र, विरोचन का विरोचन, लेकिन उनको संबोधित किया हे विरोचन। वो ऐसा कार्य करने जा रहे थे इसलिए विरोचन कहके, बलि महाराज को भी विरोचन कहके संबोधित किया। वो विरोचन कहके उनको यह कहना चाहते थे, अरे क्या तुम भी विरोचन जैसा ही करोगे, तुम भी विरोचन की तरह ठगे जाओगे। हाँ, विरोचन जो थे वो ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर संभाव भाव रखते थे। तो एक बार इंद्र और अग्निदेव वो ब्राह्मण का रूप लेकर आ गए विरोचन के पास और उनसे उनकी आयु मांग ली। तो उन्होंने समझा ये ब्राह्मण है, दे दिया आयु। बाद में पता चला कि अरे ये तो देवता थे, इंद्र था। तो इस प्रकार विरोचन ठगा गया, तुम भी ठगे जाओगे। तुम समझ रहे हो ये ब्राह्मण है, अरे ये ब्राह्मण नहीं, ये तो देवताओं का भी देवता देव है। तो इस प्रकार, तो इसीलिए हम कभी कभी ऐसा उल्लेख सुनते हैं कि महाराज रेवत की पुत्री रेवती, लेकिन महाराज रेवत के पुत्र ककुज्ञ की पुत्री रेवती थी, है? जिनका बाद में बलराम जी के साथ ब्रह्मा जी के सलाह पर विवाह हुआ। तो इसी कुल का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। आइए आज के श्लोक पर जाते हैं। स्कंद 9 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 10। इस श्लोक में आए हुए शब्द इस प्रकार हैं। सुकन्या चवन्नम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रणियाम आस चित्तज्ञा अप्रमत्तानुव्रति भी। सुकन्या चवनम प्राप्यम पतिम परम कोपनम प्रणियामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुव्रत भी। अनुव्रति सुकन्या चवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रणियामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुव्रत्ति भी। सुकन्या चवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रणियामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुव्रत्ति भी। कोपनम परम कोपनम प्रियण्यामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुव्रत्ति भी। धन्यासवनम प्राप्य किं परम कोपनम प्रणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुव्रत्ति भी। सुकन्या च वनम प्राप्य प्रमत्तानुव्रत्ति भी।
माता जी
सुकन्या च वनम प्राप्य परम कोपन अप्रमतामनुवृत्ति। सुकन्या परमं पाप्य पति परम कोपनम ज्ञानानुचितज्ञ
इस श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ। सुकन्या राजा सयाति की पुत्री सुकन्या ने राजा सयाति च्यवनम च्यवन मुनि को प्राप्य पाकर पतिम पति के रूप में परम कोपनम जो सदैव अत्यंत क्रुद्ध रहता है प्रीणियमाम आस उनको प्रसन्न किया कि तज्ञा अपने पति की मन की बात जानने वाली अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी मोहित हुए बिना सेवा करके। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु जब सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया तो उनके मनो अनुकूल उसने सावधानी से व्यवहार किया। उसने बिना मोहित हुए उनकी सेवा की। तात्पर्य प्रभुपाद महाराज के द्वारा, विशेषकर माता जी ध्यान दें, प्रभु जी भले सो लें, यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का घोतन है। च्यवन मुनि जैसा महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बना रहना चाहता है, ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता। अतएव च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी, अतएव उसने तद अनुसार वर्ताव करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। यहां तक कि श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले वर्ताव में भी इसे देखा जा सकता है कि यद्यपि ये रानियां बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां थी, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों ना हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात उसे अपने पति के आदेशों का पालन करने तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि पत्नी भी पति के समान क्रोधी बन जाए तो उसका ग्रस्त जीवन अवश्य ही अस्त व्यस्त हो जाएगा या पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नी विनयशील नहीं है, इसलिए छोटी से छोटी घटना होने पर गृहस्त जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यह दास प्रवृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो स्त्री की निपुणता है जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी या नृशंस पति पर विजय पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पितामह होने के योग्य तथा अत्यधिक क्रोधी थे, जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार वह आज्ञाकारिणी एवं साध्वी पत्नी थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोमिष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथंबितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकुलपतरोभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो दिजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तदां वृंदावनम् रम्यकाचिता उपासना व्रजवधूवर्गेण यो कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतैदं तत्रादरो न परा हरे कृष्ण। यहाँ पर विशेषकर स्त्रियों के लिए शिक्षा दी जा रही है जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम में नहीं आ पाते हैं उनके लिए थोड़ा सा पहले से चर्चा कर लें कि शयति ये सूर्यवंश में आए हुए एक राजा हैं और उनकी सुंदर पुत्री कमल लोचनों वाली जिसकी आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी थी ऐसी सुंदरी सुकन्या के साथ महाराज एक बार वन में भ्रमण कर रहे थे। राजा के साथ कई सैनिक थे
और इस सुकन्या के साथ अपनी सखिया, वो वन में भ्रमण कर रही थी, वहां के वन के सुंदर सुंदर वृक्षों को देख रही थी। देखते देखते उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने एक बिंब का अर्थ है कि जहां उदई लगती है और उसका मिट्टी का एक ढेला बन जाता है, आपने देखा होगा गांव में रहते हैं लोग। तो ये क्या, भागवतम को समझने के लिए गांव के लोग जल्दी समझ जाते हैं, यहां पर वो बिंब कहेंगे तो कोई समझ नहीं पाता कि बिंब मतलब क्या था। गांव में घरों में जब उदई लग जाती, बहुत दिन से जहां कोई साफ सफाई नहीं होता है या कोई क्रिया नहीं होती है तो वहां पर उदई लग जाती है और उस पर मिट्टी का एक ठेला जम जाता है, धंधा जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार एक मिट्टी का पूरा धंधा बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर भीतर दो छिद्र थे, वहां से कुछ दो चमकीले चमक रहे थे, दो आंखों जैसा। वो समझ नहीं पाई कि ये क्या है, तो कौतूहलवश अज्ञानवश कौतूहल से उसने एक सूल लिया, और सूल तो समझते हैं सब, ये भी गांव का वस्तु है, यहाँ सूल नहीं होता है, यहाँ तो कंकड़ और पत्थर की दीवारें रहती है। तो सूल को लेकर, ये सूल जो नहीं समझते हैं वो अपने जो पिन आता है ना, टाँचनी जिसको कहते हैं, उसके जैसा होता है। उस सूल को लेकर उसने वो दो जो चमकीले छिद्र दिख रहे थे उसके अंदर उसने ऐसा घुसाया, और जैसे घुसाया तो उसमें से रक्त वहन करने लगा। वो तो कौतूहलवश जान नहीं पाई कि क्या है और चल दी इस प्रकार करके, लेकिन इस प्रकार करने से ये का उसने क्यों किया, तो वहां पर यहां भागवत में लिखे देववश ऐसा कर दिया, मतलब कुछ देववश, देव के अधीन होकर। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके पीछे कुछ विशेष आयोजन होता है, देव आयोजन होता है या विधाता का कुछ विधान होता है। ये कभी कभी लोग प्रश्न अटपटा करते हैं जिसका उत्तर वो ही नहीं पाता। एक बार राजस्थान में भागवत सप्ताह हो रही थी रामानंद प्रभु, तो माली समाज के एक अध्यक्ष थे, तो एक प्रश्न के पीछे पड़ गए तो वो मान ही नहीं रहे थे। महाराज परीक्षित ने ऐसा सर्प क्यों डाला, क्यों उनके गले में डाला, और महाभागवत थे, इतने महान भक्त थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, आचार्यों का मत दिया वो दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए कि ये ऐसा क्यों किया। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देववश होती हैं, जिसमें कुछ विधाता का विधान होता है, किसी देव का या भगवान की कुछ योजना होती है, इस एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तब एक्सेप्ट करना चाहिए, हो सकता है इसके पीछे भगवान की कोई विशेष योजना है, इसको देववश कहते हैं, कहीं कहीं ये कालवश कहा जाता है, कभी कभी कालवश भी कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ, तो ये कालवश, सर्वत्र काल का राज्य है, सब कठपुतली है, तो इस प्रकार देववश उसने ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा होने से जो राजा के सैनिक थे उनका मलमूत्र बंद हो गया, अतिशय जब आपका मलमूत्र बंद हो जाता है बहुत कष्ट में आ जाते हैं। जैसे अचानक ये मलमूत्र बंद हो गया तो राजा जो सयाती थे, ये बहुत ही विद्वान पुरुष थे, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया हुआ था और बहुत विद्वान पुरुष थे, ज्ञानी थे, ये तुरंत समझ गए कि अरे हम यहाँ च्यवन ऋषि के आश्रम में आए हैं, क्या किसी सैनिक ने उनके प्रति कोई अपराध तो नहीं किया, जरूर हमसे कुछ अपराध हुआ है जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। अपना अपराध देखना, किसी कष्ट के समय में अपना अपराध, दूसरों को दोष न देना, ये विद्वान पुरुषों का, धार्मिक पुरुषों का विचार होता है। हम लोग कुछ कष्ट होता है तो तुरंत दूसरे को दोष देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसमें कुछ हमारा गलती हो सकता है, हैं? अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आया है, कोई दुविधा आई है, तो इसमें कुछ हमारी तरफ से कुछ गलती हुआ है, या हमारा कोई अपराध हुआ है, या हमारे कुछ कर्मवश या भाग्यवश ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं सोचते हैं। ये इसने ऐसा किया है, बस अंगुली है दिया हुआ है उसको, बस इसने ऐसा किया है, ये नहीं सोचते कि इसने कोई हम भी का हमारा भी कुछ हो सकता है। प्रभुपाद महाराज को एक प्रभुपाद महाराज क्लास दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और उस प्रवचन में विदेश में एक यहाँ का बंगाली भक्त, भक्त नहीं था, बंगाली व्यक्ति था, तो व्यास पीठ पर प्रभुपाद महाराज प्रवचन दे रहे, वहां प्रभुपाद महाराज का इंसल्ट कर दिया उसने, मतलब अनशन बोलने लगा। तो कुछ भक्त एकदम, प्रभुपाद महाराज शांत बैठ बोलने दो उसको, तो बोलने दिया, फिर वो चला गया। तो प्रभुपाद महाराज से पूछा कि अरे महाराज आपका व्यासपीठपुर मतलब सबसे इतना ऊंचा आसन है और वहां किसी का इंसल्ट हो रहा, आप चुपचाप सहन किए, नहीं ऐसा नहीं सहन करना है। तो प्रभुपाद महाराज ने कहा कि हो सकता है हमारे कुछ पूर्व कर्म का ये फल हो, हैं, पूर्व कर्म में मैंने इसका कोई अपराध किया। वो कहते कि आपने तो कोई ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं, हमने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ ऐसा हमारा कर्म का विधान हो, कुछ व्यवहार रहा होगा, है। कभी कभी भक्त या व्यक्ति सोचते अरे हम तो बहुत अच्छे, हमने नहीं कभी इसके साथ कुछ व्यवहार ऐसा गलत नहीं किया, ये क्यों कर रहा है, हम बस उस पर अटल अड़े रहते हैं। इस समय आपने कुछ व्यवहार नहीं किया उसके साथ गलत, लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ। तो महाराज सयाती बहुत विद्वान पुरुष थे, उन्होंने तुरंत सोचा कि जरूर इसमें हमारा कोई गलती हुआ है, कोई अपराध हुआ है। तो सैनिकों ने तो कहा नहीं हमने तो कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया, अपराध नहीं। लेकिन वहीं ये सुकन्या साथ में थे, इसने तुरंत अपने पिताजी से कह दिया कि हाँ पिताजी, मैंने एक वो बिंब देखा था और उसमें सुई घोपी तो उसमें से खून बह रहा था, लगता वे ऋषि थे या उनके प्रति मुझसे अपराध हुआ है। तब महाराज सयति तुरंत समझ गए कि ये तो अपराध हुआ, इतना मलमूत्र बंद हुआ है, लेकिन इससे भी भारी संकट आ सकता है। राजा तुरंत समझ गए कि च्यवन ऋषि जो है ये बड़े तपस्वी व्यक्ति हैं, बहुत अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं, और तपस्वी व्यक्ति के प्रति जब हम अपराध करते हैं इससे बहुत बड़ा भारी संकट हमारे ऊपर आ सकता है, तो इसका उपाय करना चाहिए तुरंत। हैं, जैसे आपने कथा सुना होगा या इसमें ही आएगा इसी स्कंद में आगे, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा का झगड़ा हो गया था। हाँ, जो झगड़ा हो गया तो शर्मिष्ठा भी बहुत, देवयानी पहले बहुत बोली और फिर इसके बाद शर्मिष्ठा, तो वो भी राजा की विपुश्रवा की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी, तो उसने भी बहुत कुछ बोला, अरे तुम ब्राह्मण लोग हमारे टुकड़ों पर पलते हो और इस प्रकार इतना बड़ा बड़ा बोल रही है ऐसा वैसा। तो देवयानी को बहुत खराब, उसने दोनों झगड़े में धक्का दे दिया और वो कुएं में गिर पड़ी, महाराज ययाति ने उसको निकाला। बाद में उसने शुक्राचार्य से जाकर शिकायत कर दी कि ये राजकुमारी ने हमारा इतना इंसल्ट किया और इस प्रकार हमको अनशन बोला। और शर्मिष्ठा के द्वारा वहां भी पता चल गया प्रपुश्रवा को कि ओ शुक्राचार्य की पुत्री है वो देवयानी और उसके प्रति हमारी राजकुमारी ने इतना अपराध किया है, निश्चित शुक्राचार्य हमको श्राप दे सकते हैं, इससे संकट आ सकता है। तो वो दौड़कर शुक्राचार्य के पास आए, भागकर, इस संकट से हमको बचना चाहिए, किस प्रकार बचा जाए। शुक्राचार्य को दंडवत किया और कहा कि महाराज हमको श्राप मत देना, श्राप मत देना, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तब शुक्राचार्य ज्ञानी थे, लेकिन कोई कितना भी ज्ञानी हो अपनी पुत्री के प्रति आसक्त थे, तो हमारी पुत्री जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। तो देवयानी ने कह दिया कि हमारा विवाह ययाति से होगा, तय हो गया है, आप अपनी पुत्री को मेरी दासी के रूप में भेजो। ओह, शुक्राचार्य जी ज्ञानी और ये ज्ञानियों की पुत्री है, इसलिए लक्ष्मी जी जब स्वयंवर में एक एक को देख रहे थे, ज्ञानी है लेकिन इनमें क्या दम है, ज्ञानियों में भी कोई दम नहीं। तो इस प्रकार शुक्राचार्य के श्राप से बचने के लिए उन्होंने शर्मिष्ठा को दासी के रूप में दे दिया। इसी प्रकार ये महाराज जो सयाति थे, उन्होंने संकट से बचने के लिए, इसमें लिखा गया है, कृच्छान मुक्त स्वान मंत्र, कृच्छवान करता है संकट से बचने के लिए, कृच्छवा मतलब कठिनाई से बचने लगे हो, ये कठिनाई उपस्थित हो सकता है, राजा और कुछ आगे, मुनि और कुछ आगे कर सकता है, तो इस कठिनाई से बचने के लिए तुरंत वे अपना हाथ जोड़कर च्यवन ऋषि के पास गए अपनी कन्या के साथ और उनसे क्षमा याचना करने लगे। और क्षमा याचना के बाद यहां लिखा तद अभिप्राय ज्ञाय प्रदाद दुहित्री मुने, दुहित्री पुत्री को कहते हैं, तद अभिप्राय प्रज्ञाय, च्यवन ऋषि के अभिप्राय को जानकर, अभिप्राय को जानकर मतलब जब वे अपनी पुत्री को लेकर गए और क्षमा याचना किया कि हमारी पुत्री से ये गलती हो गया है, ऋषिवर क्षमा करें, तो अभिप्राय का अर्थ है कि उन च्यवन ऋषि ने पूछा कि क्या तुम्हारी पुत्री विवाहिता है, विवाह हो चुका है इसका। हालांकि च्यवन ऋषि सुकन्या के दादा के उम्र के थे, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि जब च्यवन ऋषि ने पूछा कि तुम्हारी ये दुहिती पुत्री क्या विवाहिता है, तब इतना मात्र कहने से सयाति राजा समझ गए कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, उनका अभिप्राय जान गए। इसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, किसी का इशारा से ही समझ जाए कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, लोगों को हथौड़ा मार मार कर कहने पर भी नहीं समझते हैं, इशारे में समझता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। तो राजा बुद्धिमान थे, इसलिए राजा का पहला ही गुण बताया गया कि ये इन्होंने वेद पठन किया था, बड़े विद्वान पुरुष थे, तो इशारे से समझ गए कि ओह विवाह का इसलिए पूछ रहे हैं कि इनका इच्छा है विवाह करने का। तो उन्होंने देखा नहीं कि ये तो बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने देखा कृच्छा मुक्ता, कठिनाई आने वाली कठिनाई से मुक्त होने के लिए, और च्यवन ऋषि चूंकि बहुत तपस्वी व्यक्ति थे, भक्त थे, इसलिए उनको इस प्रकार देखकर और संकट से बचने के लिए राजा का मुनि का इच्छा जानकर उन्होंने अपनी पुत्री को उन्हें दान में दे दिया, कन्यादान में दे दिया। और कन्यादान में देने के बाद फिर वे वहां से मुनि की आज्ञा लेकर अपने घर लौट गए। अब वो तो लौट गए, अब बताते हैं कि अब यहां आज का श्लोक बताते हैं, सुकन्या च्यवन प्राप्तम, वह सुकन्या महाराज सयाति की पुत्री च्यवनम, च्यवन ऋषि को प्राप्यम, प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, किस संबंध से प्राप्त, पतिम, पति के रूप में प्राप्त किया। अब उनका गुणावली हो रहा है, वो कैसे थे, स्वभाव कैसा था इनका, च्यवन ऋषि का, परम कोपनम, परम कोपनम, कोपन का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध में परम थे, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, दुर्वासा जी की तरह, परम कोपनम, बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। ऐसा जो पति जो होता है, जो क्रोधित स्वभाव का होता है, बहुत कोप, उसके साथ पत्नी को निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हैं? ये विशेषकर स्त्रियों के प्रश्नों का यहां पर एक उत्तर है, इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भी तात्पर्य लिखा विशेषकर स्त्रियों को शिक्षा दी प्रभुपाद जी ने। परम कोपनम, वो बहुत ही क्रोधी थे, साधारण क्रोधी नहीं, परम कोपनम का बहुत क्रोधी थे, जैसे दुर्वासा जी हैं, हैं? जीवा पर क्रोध उनका रहता था, वो कहीं कभी कभी तो ये जो परम कोपनम बहुत क्रोधी व्यक्ति होते तो गलती तक, अपनी गलती तक को नहीं देखते। दुर्वासा जी भी परम कोपनम है, दुर्वासा जी को देखिए, दुर्वासा परम कोपनम व्यक्ति कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए, वो उनके साथ निभाना ये बहुत बड़ी एक कला है, वास्तव में बहुत। दुर्वासा जी आप जानते हैं कथा को, एक बार द्वारिका के वन में आए थे, तो द्वारिका के वन में आए तो जब भगवान को पता चला कि ओहो ब्राह्मण देव ऋषिवर यहाँ आए हैं तो उनको हमारे घर बुलाना चाहिए, ये भगवान ग्रस्त आश्रम की शिक्षा दे रहे हैं। ग्रस्त आश्रम व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वो साधुओं को भक्तों को ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करे, हैं? ये ग्रस्त का कर्तव्य है, उनको आमंत्रित करे और उनसे ज्ञान प्राप्त करे और बदले में उनको दक्षिणा दे, दक्षिणा देकर संतुष्ट करे, ये आदान प्रदान होता है साधुओं और ग्रस्त के संबंध में। साधुओं का परम कर्तव्य है कि वे ग्रस्तों के घर जाएं, ग्रस्तों का कर्तव्य है कि उनका सम्मान करें, आदर करें, उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और उनको मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में प्रश्न करें, जाने। तो इस प्रकार भगवान ने जिज्ञासा की कि उनको अपने घर बुलाया जाए, तो पहले आमंत्रण भेजा होगा तो दुर्वासा जी ने कहा ना हम ऐसे नहीं आते, अगर कृष्ण को ले जाना है तो वे यहां आकर हमको ले जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है हम जाते हैं वहां पर, बोले ऐसे अकेले नहीं पत्नी के साथ आए, रुक्मणी जी और कृष्ण दोनों आए और हमको यहां। तो भगवान गए विनती करने के लिए रथ लेकर, बोला बिराजी और हमारे घर चलिए, बोला रथ में बैठूंगा लेकिन रथ में ये घोड़े नहीं, आपको जीतना, अगर मुझे ले जाना आपको जीतना पड़ेगा, क्या जरूरत है घोड़ों की जगह में, बोला आपको जूतना पड़ेगा, अभी देखिए। और रुक्मणी जी दोनों को, एक बार कृष्ण को कह दिया होता तो भी ठीक है, कि ठीक है रुक्मणी जी को भी जूतना होगा, आप दोनों जूतिए घोड़ों की जगह पर और फिर मैं तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं। भक्त ये साधु, ये कोई साधु स्वभाव नहीं है, अपना डिमांड रखते हैं, आजकल ये हो गया है डिमांड रखते हैं। उन महात्मा जी को बुलाना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, ये साधु बनाने। उन्होंने डिमांड रखा कि इस प्रकार तो भगवान ने किसी भी प्रकार, देखिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी तरह से साधु या ब्राह्मण अगर हमारे घर आता है तो कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसको बुलाना चाहिए, भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। भगवान अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपना धर्म पालन कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि ये कितना टेढ़ा टेढ़ा कर रहा है, टेढ़ा ही कर रहा है। कितनी सुंदर शिक्षा है भगवान की लीलाओं में। दुर्वासा जी की टेढ़ा ही वो नहीं देख रहे हैं, उनको जोतने का क्या उद्देश्य है, क्या इसमें दुर्वासा जी क्या चाहते हैं, लेकिन भगवान इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। वो भले कुछ भी है, वो तो परम कोपनम है, इसलिए सावधानी रहकर हमको इनको प्रसन्न करना है, ले जाना है, मेरा क्या कर्तव्य है, है? कहते हैं इनके सर दिए भी गुरु मिले तो उसको सस्ता जान। तो इस प्रकार भगवान ने एक्सेप्ट किया, हाँ तैयार, दोनों जूत गए। अब रुक्मणी जी को जुताया गया, वो है साक्षात लक्ष्मी जी, और जून मास का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रहा था और वो रथ को जूते और ले जा रहे हैं। देखिए भगवान की शिक्षा है, कितना साधुओं को भक्तों को सम्मान देना चाहिए, भगवान ग्रस्तों का क्या कर्तव्य है, थोड़ा सा कष्ट भी उठाकर भक्तों को सम्मान देकर ले जाना चाहिए अपने घर में। कुछ लोग तो दरवाजा बंद कर देते हैं। एक बार राधा गोविंद महाराज आए थे, प्रातः प्रातः हमारे घर आए और फिर महाराज ने कहा कि हम सबके घर जाना चाहते हैं। तो पहले विश्वात्मा प्रभु पहले जूने घर में रहते थे, तो हम गए तो उनके नीचे एक दूसरा व्यक्ति था उनके घर में, तो महाराज आगे थे हम पीछे थे, महाराज को पता नहीं था कि ये किन का घर, तो उनके घर दरवाजा खुला था तो उसमें भी बोलो नहीं 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 इधर नहीं इधर नहीं। अरे बाप रे, क्या कलयुग में लोगों का कहां तक पतन हो गया, साधु के बेस में आए, नहीं नहीं इधर नहीं इधर नहीं, आश्चर्य में पड़ गए, क्या इधर नहीं, क्या कोई डाकू आ रहा है तुम्हारे घर में, इस प्रकार हो, नहीं 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 इधर नहीं, हम तो आश्चर्य से किधर गए, हमने कहा महाराज नहीं नहीं उपला मंजिली पे ये नहीं है घर, तो इस प्रकार साधु तो वो तो किसी के भी घर में जा सकते हैं, भले किसी का, लेकिन कैसे आजकल लोगों का स्वभाव बनता जा रहा, कितना पतन होता जा रहा है। लेकिन भगवान शिक्षा देने के, साधु अगर हमारे घर आए तो किसी भी कीमत पर ले जाना चाहिए, वे हमारा परम कल्याण कर सकते हैं, हैं? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भगवान चले तो थोड़ा चले तो रुक्मणी जी को गर्मी की वजह से प्यास लगा, तो उन्होंने कहा अरे प्रभु मेरा गला बिल्कुल सूख रहा है, तो क्या करें। तो भगवान ने चल रथ के जूते जूते ही अपना एड़ी मारा और वहां से जल प्रकट किया और उसको अंजुली में भर के रुक्मणी जी को पिलाया। तो दुर्वासा जी रथ में बैठ बैठे कुपित, परम कोपना कुपित हो गए, मैं बैठा और मुझको बिना पूछे, बिना मुझको अर्पण किए, बिना मुझे ऐसे किए तुम पी ले, इतना तुम्हारे अंदर बहुत गाढ़ संबंध है, मेरा भी कोई वैल्यू नहीं, जैसा अम्बरीश महाराज के ऊपर कुपित, ऐसा कुपित हो गए और श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों इस प्रकार, तुम्हारा द्वारिका में तुम दोनों एक साथ नहीं रहोगे कभी भी। इसलिए आज भी हम जाते हैं तो द्वारकाधीश का मंदिर है, रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर नहीं है, द्वारिका में जो पौराणिक मंदिर है वो खाली द्वारकाधीश है, उनके साथ रुक्मणी जी नहीं है, रुक्मणी जी का मंदिर और बाहर है गांव के। तो दुर्वासा जी के इस श्राप को भी भगवान ने स्वीकार किया, परम कोपनम। तो ऐसे ये भी परम कोपनम थे इनके साथ, वो तो एक दिन की घटना है, अब सुकन्या को तो जीवन भर उनके साथ रहना है, परम कोपनम। और परम कोपनम के साथ साथ वो वृद्ध भी थे, कौन इस संसार में कन्या है जो ऐसे वृद्ध पति को स्वीकार करती है, नहीं कर सकती। लेकिन पिता ने दे दिया, मतलब बस पहले ये नहीं होता। प्रभुपाद जी भागवतम के तीसरे स्कंद में है, बहुत सुंदर लिखते हैं तात्पर्य में, कर्दम जी के विषय में, कर्दम जी का जो प्रसंग है, कर्दम मुनि को जब महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति प्रदान कर दी, उन्होंने कहा मैं, तो इस प्रकार पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्री के लिए वर ढूंढे और पुत्री उसको स्वीकार करती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है, किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ऐसे रोड पर घूमकर युवतियों को पति नहीं ढूंढना चाहिए, प्रभुपाद जी ने ये स्पष्ट वाक्य लिखा है। जैसे आजकल रोड पर घूमकर युवतियां अपने पतियों को ढूंढती हैं, फ्रेंड ढूंढती हैं, ये हमारा संस्कृति नहीं है, और निश्चित इस प्रकार ढूंढने वाले अंत में दुख के सिवा उनको कुछ नहीं मिलता, डिवोर्स होता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार पति को नहीं ढूंढा जा सकता, पिता अपनी कन्या के लिए वर ढूंढता है और जिसको दान करता है वो कन्या उसके घर जाकर पति के अनुरूप रहकर। तो वो वृद्ध थे, उनके दादा के उम्र के थे, फिर भी अपने पिता ने जब उनको दे दिया, कन्यादान कर दिया, तो उस कन्या सुकन्या ने उसको स्वीकार किया। अब यहां पर जो मैंने पहले कहा था कि मां, जब भी शास्त्र में स्त्री धर्म के विषय में बताया जाता है तो आजकल की जो माताएं उनका पहला प्रश्न होता है कि अगर हमारा पति ठीक नहीं है तब क्या किया जाए, हम तो बहुत अच्छी हैं लेकिन हमारा पति ऐसा है तब क्या किया जाए। तो इस प्रसंग को कि पति, देखिए यहां पर पति कैसा है, परम कोपनम, एक तो बहुत ही क्रोधित है, परम कोपनम, बात बात में कुपित हो जाता है। खाली कोपनम होता तो ठीक है, कोई ऐसा प्रसंग आए और क्रोधित हो जाता, परम कोपनम कोई भी बात हो क्रोधित हो सकता है वो। और दूसरा वो वृद्ध है, लेकिन ऐसे पति के साथ ये सुकन्या किस प्रकार रही आई उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। परम कोपनम प्रणया मास चीतज्ञ, प्रणया मास मतलब प्रणया मास, उनको ऐसे पति को भी उसने प्रसन्न रखा, ऐसे पति को भी उसे उसने प्रसन्न। अब ऐसे पति को हम कैसे प्रसन्न रख सकते हैं जो बहुत कुपित है और परम को उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, क्रोध वाला, ऐसे पति को कैसे हम प्रसन्न रखें। तो यहां पर विशेष शब्द चीतज्ञ बहुत महत्वपूर्ण बात है, चीतज्ञ स्त्री अपने कैसे भी पति को किस प्रकार प्रसन्न रख सकती है, तो कहते चीतज्ञा। चीतज्ञा का अर्थ होता है चित, चित का अर्थ चित, उसका विचार या उसका जो विचार है, और ज्ञा का अर्थ है जानकर, ज्ञान, ज्ञा का अर्थ ज्ञान होता है। हमारा पति क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, उसको जानकर अप्रमत्ता, अप्रमत्ता का अर्थ होता है अपने पर गर्वित ना होकर, मोहित नहीं, मैं तो वो हूं, वैसी हूं, वैसी हूं, मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूं, ये तो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, मेरे पिता का घर ऐसा है, मैं तो राजकुमारी हूं, वो इतना पढ़ी लिखी हूं, तो उससे अप्रमत्ता, उसका प्रमत्त मद न रखकर, मोहित हुए बिना, उसका मद न रखते हुए अमृत अप्रमत्ता अनुव्रत भी, अनुव्रत भी का अर्थ उस जो चवन ऋषि के मन में जो विचार होता था उसके अनुकूल रहते हुए वो अनुव्रत भी, उसके अनुसार वो कार्य करती थी, है उसके अनुसार। एक आचार्य ने लिखा कि अनुव्रत भी मतलब उसके पति को खाने में क्या पसंद है उसके अनुसार, उनके पतिदेव कैसा व्यवहार चाहते हैं उसके अनुसार, मतलब पति के आव भाव को समझकर उसके अनुसार वो कार्य करती थी। और पतिदेव के इच्छा के अनुसार कार्य करने से उनके पति प्रसन्न हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे कभी कभी स्त्रियां ये प्रश्न करती हैं कि शास्त्र या ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति धर्म को पालन करके, पति को संतुष्ट करके, वो सब कुछ प्राप्त कर सकती है, स्वर्ग को प्राप्त कर सकती है, लेकिन हमारा पति ही निठल्ला है, उसमें कुछ गुण नहीं है, उसमें कुछ धन भी उसके पास नहीं है, कुछ योग्यता नहीं है, तो हम उसको प्रसन्न करके उससे क्या प्राप्त कर सकती हैं, ये प्रश्न होता है। अभी ये बुढ़ा पति है, बहुत क्रोधित है, अभी उसको प्रसन्न करके उसको क्या सुख मिलने वाला है, जबकि शास्त्र कहता है कि कैसा भी पति हो, है अनसुया जी सीता जी को कहते हैं कि शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, अगर पति अशुभ, शुभ अशुभ मतलब भला है या बुरा है, लेकिन ऐसे पति का भी अनुव्रतनी होकर जो व्यवहार करती है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। लेकिन कैसे ये कैसे हो सकता है, पति में कुछ योग्यता ही नहीं है उसको सुखी करने की, कुछ दे नहीं सकता, अच्छी साड़ी लाकर देने की योग्यता नहीं है उसमें, कोई योग्यता नहीं, कोई कमाता धमाता भी नहीं है इतना बड़ा, स्वभाव बेकार है, व्यवहार ठीक नहीं है, फिर उसको सेवा करके स्त्री कैसे, ये प्रश्न होता है। इस प्रसंग में आप प्राप्त आगे जाकर सुनेंगे कि ऐसे पति को भी प्रसन्न करके वो किस प्रकार सब सुख को प्राप्त कर गई। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि शास्त्र जो कहते हैं, ये जो धर्म का, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, जो हमारे शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म के बारे में निर्देशन करते हैं, ये निर्देशन स्वयं भगवान के द्वारा अनुमोदित है, धर्म का ज्ञान तो भगवान ने दिया है। तो इस प्रकार वो शास्त्र के द्वारा जो हमको धर्म का ज्ञान मिलता है, जैसे पतिव्रता धर्म, सती स्त्री का धर्म है पतिव्रता रहना, तो जब कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपने धर्म का पालन करता है, हैं जो शास्त्र ने बताया, उस धर्म का कोई भी व्यक्ति पालन करता है तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। बात को समझना इस सिद्धांत को, जैसे स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, पति कैसा भी है, शुभ है अशुभ है, लेकिन वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो उसके इस धर्म के पालन से भगवान प्रसन्न होते हैं, पति कैसा भी हो लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके लिए क्या सिद्धांत ये। तो इस प्रकार उसने अपने पति का, पति धर्म का पालन किया, तो बाद में आप देखेंगे कि वो दादाजी जैसे उम्र वाला पति भी एकदम इतना युवान हो गया, इतना युवान हो गया कि एक बार एक यज्ञ में गए थे ये पति पत्नी, तो राजा तो उनका पिता सरयाती तो क्रोधित हो गया कि मेरी बेटी ने क्या किया, वो उस बुढ़े पति को छोड़कर क्या कोई दूसरा लड़का कर दूसरा पति बना दिया, क्या किया, अरे दुष्ट कुल को घात लगाने वाली, ऐसा सोचने लगी, ये तो कुल को नाश करने वाली। जब कन्या पत्नी में या कन्या का व्यवहार ठीक नहीं रहता तो वो दो कुलों को नाश कर देती, ऐसा लिखा है, वो दो कुलों का पतन करा देती है, अपने पति कुल का पतन करा देती है और अपने पिता के कुल का भी पतन करा देती है। जब पत्नी कोई गैर व्यवहार करती है तो इससे इससे पिता का कुल भी बदनाम होता है, यहां तक कि उसके नाना का कुल तक लांछन लग जाता है, और पति का कुल तो होता ही है। पत्नी का अर्थ होता है जो पतन से बचा ले, इसलिए उसको पत्नी कहते हैं, और पति का अर्थ होता है जो उसका पालन पोषण करे। तो इस प्रकार करके इसने किस प्रकार बाद में युवान हो गए हैं, आप लोग सबको पता होगा। इस च्यवन ऋषि के च्यवन ऋषि ने एक औषधि बनाया था, उसका ही नाम है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश है ना, उसको खाने से बुढ़ा भी जवान हो जाए। अश्विनी कुमारों ने ऐसा औषधि बनाया था, अश्विनी कुमारों से इन्होंने विनती किया, ये आगे प्रसंग आएगा कि अरे हमको कुछ उम्र दे दो, जवान बना दो। तो फिर ये अश्विनी कुमारों ने ये च्यवनप्राश बनाने का बताया होगा, तो च्यवन ऋषि ने ये च्यवनप्राश बनाकर खाया, तो आज भी वो च्यवनप्राश नाम है, ये च्यवन ऋषि से उनका नाम पड़ा च्यवनप्राश, जिसके खाने से वो युवान हो गए। इस प्रकार कई प्रसंग शास्त्रों में मिलते हैं। वृद्ध व्यक्ति अभी इसे कह सौभरी ऋषि थी, सौभरी ऋषि को भी गरुड़ जी का वैष्णव अपराध करने के लिए उनको उनका भी पतन हुआ। तब पतन हुआ तो वे उस समय मथुरा में राजा मंधाता महाराज राजा थे, तो उनके राज्य में गए और जाकर कहा कि मैं तो आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। अब वो राजा मंधाता घबरा गए, अरे सौभरी ऋषि है, बहुत बड़ा योगी है, बहुत सिद्धि प्राप्त है, मैं मना करूंगा तो श्राप दे देगा। तो क्या विचार किया उन्होंने, विचार करके कहा कि ठीक है, मेरी 50 कन्याएं हैं, मैं इनको लाके यहाँ खड़ा, अगर वो आपको जो भी कन्या आपको चॉइस करेगी मैं वो कन्या दे दूंगा। और मंधाता ने बहुत अच्छा आइडिया किया, 50 कन्या ये तो वृद्ध है, इसको किसी को चॉइस कौन चॉइस करेगी, ये वृद्ध को, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर से ढोल दिया कि मेरी कन्या स्वयंवर चुनेगी। तो वो भी तो योगी थे, सिद्ध योगी, तो समझ गए, ओ राजा बड़ा बुद्धिमान, तो मैं उससे भी बुद्धिमान हूं। उन्होंने अपने आप को 50 रूपों में विस्तार कर दिया और युवान बना दिया, एकदम योगी थे, सिद्धि था। इस प्रकार करके फिर 50 कन्याओं से शादी किया, क्योंकि वो बहुत, लेकिन यहां पर इन्होंने च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से औषधि करा के युवान बन गए। यहां पर विशेषकर स्त्रियों के लिए पति धर्म का शिक्षा दिया गया है। पति धर्म के विषय में विशेष शिक्षा इस श्लोक में यह है कि स्त्रियों का यह प्रश्न होता है कि प्रभु जी कैसे एडजस्ट करें। अब एडजस्ट करने की बात यह है कि अगर पति हमारे अनुकूल है उनके लिए तो क्या, उनके लिए कोई ज्ञान नहीं। पति जब अनुकूल ही है, हाँ जब भी हम पति को कहते हैं वो रसोई बना देता है, कपड़े धो देता है, तो उसके साथ तो रहने में कोई दिक्कत है ही नहीं, उसके साथ क्या एडजस्ट करना, वो तो पहले से बेचारा एडजस्ट हो गया है। एक व्यक्ति को एक दोस्त थे, दो दोस्त, दोस्त ने पूछा कि अरे भाई तुम क्यों कपड़ा धो रहा है, तुम्हारे तो नौकरानी था ना वो कपड़े धोती थी। तो बोला अब तो मैंने उससे शादी कर लिया है, उस नौकरानी से, तो अब वो काम मेरे को करना पड़े। तो वहां तो कोई एडजस्ट करने की बात आती नहीं है, ये शिक्षा एडजस्ट करने की वहां आती है जहां का माहौल अनुकूल नहीं प्रतिकूल है। प्रतिकूल अवस्था में एडजस्ट करना यही वास्तव में बुद्धिमानी है। अनुकूल में तो आजकल तो खैर इतना नहीं है प्रॉब्लम, आजकल तो सब पतिव्रता स्त्रियां हैं कि नहीं है, लेकिन पत्नीव्रता पुरुष हैं, अब पुरुष पत्नीव्रता हो गए। महाराज इसके विषय में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, मैं तो नहीं देना चाहता, तो एक बार पतिदेव जा रहे थे मार्केट, तो बोला मेरे लिए सैंडल लेके, महाराज ने एक उदाहरण दिया, सैंडल लेके जाना, लेके आना। बोला तुम्हारे सैंडल का माप मेरे को कैसे पता चलेगा? तो उस पत्नी ने सैंडल उतार के जोर से फेंका तो उसके ऐसा पीठ पे लगा तो उसका निशान पड़ गया। बोला ये निशान दिखाना उसको। तो ऐसे पतियों के साथ एडजस्ट का कोई बात नहीं है। ये खैर मैं तो विनोद कर रहा हूं। एडजस्ट का बात वहां आता है जहां पति अनुकूल नहीं है, वहां पत्नी को अनुकूल बनना चाहिए। इसी नवे स्कंद में जब भगवान राम के चरित्र का वर्णन आएगा, वहां प्रभुपाद जी विशेष कर लिखते हैं कि सीता जैसी पत्नी हो और राम जैसा पति हो तो उसको स्वर्ग और वैकुंठ की कामना, स्वर्ग की कामना क्या करना है उसको, क्या उसका घर ही स्वर्ग है, हैं? राम जैसा पति। ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र पतियों के लिए भी शिक्षा देते हैं। भगवान भी अपनी लीलाओं में पति धर्म का भी बताते हैं, पत्नी स्त्री धर्म का है। सीता जी जब भगवान राम के लिए इतनी अनुकूल रही कि जो राजमहल में रहने वाली थी, राजकुमारी थी, कभी वो मखमल के बिना गद्दे के सिवा वो चली नहीं, ऐसी सीता जी अपने पति का अनुसरण करते हुए, वो पति के पति, अगर हमारे पतिदेव जंगल में है तो मैं महल में सोऊंगी, हमारे पतिदेव भूमि पर सोएंगे तो मैं क्या पलंग पर सोऊंगी, नहीं है। यहां पर सीता जी, भगवान राम ने बहुत मना किया कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने हमको वनवास, तुमको वनवास में रहने के लिए हमको नहीं दिया है, तुम्हारा सुख राजमहल में, हम तुमको दुख। तो सीता जी ने वहां कहा है कि पति का सुख ही स्त्री का सुख होता है। जो स्त्री अपना पति से हटकर अपना सुख चाहती है वो सती नहीं है, पति के सुख को ही अपना सुख मानना चाहिए। और इस प्रकार पति को प्रसन्न करके, पति को सुख देकर, अगर वो पति को प्रसन्न कर ले तो ये गुलामी नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विदेशी लोग इसको गुलामी कहते हैं या अतोष्टि कहते हैं स्त्री, नहीं, ये स्त्री की विजय है, ये स्त्री की विजय है, ये दक्षता है स्त्री की कि वो पति को इस प्रकार प्रसन्न रख लेती है, ये स्त्री का एक विजय है ना। और इस प्रकार स्त्री पति को प्रसन्न करके सती बनकर वो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है ना, पति की, स्त्री की शक्ति बढ़ जाती है। जो सती स्त्रियां होती है उनके पास बहुत शक्ति होती है, सतीत्व का शक्ति इतना होता है कि जैसे तुलसी महारानी वृंदा देवी जब थी तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान क्यों पत्थर बन गए, क्या भगवान श्राप का विरोध नहीं कर सकते? लेकिन भगवान ने दिखाया कि जो स्त्रियां इस प्रकार सती होती है, वो जलंधर जैसा असुर राक्षस, उसके प्रति ये इतनी सती बनी रही। तो यहां पर सती व्रता का जो धर्म है उसका क्या प्रभाव है उसको भगवान दिखा रहे हैं, स्वयं पत्थर बन गए। सती धर्म का क्या प्रभाव, ये तो भगवान तो उसको श्राप को टाल सकते थे लेकिन एक्सेप्ट किया भगवान ने। तो यह भगवान बताते हैं कि सती का कितना शक्ति होता है, सती स्त्री में कितना पावर होता है, शक्ति होता है। तो ये तो उसकी विजय है सती व्रता धर्म में। इसमें बताया गया है कि जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ जल के अंदर रहता है, तो जब वो अपनी बाउंड्री में रहता है, जल की बाउंड्री में, तो वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि हाथी को भी परास्त कर देता है अगर वो अपनी मर्यादा में जल में रहता है। जल में रहना उसकी मगरमच्छ की मर्यादा है, और जल में रहते हुए वो इतना शक्तिशाली रहता है अपनी मर्यादाओं में रहने के कारण कि वो हाथी को परास्त कर सकता, कर देता है। लेकिन वही मगरमच्छ जब अपनी मर्यादाओं को लांघकर जमीन पर आ जाता है तो कुत्ते उसको खा जाते हैं। ये शक्ति देखिए मर्यादाओं की और अमर्यादाओं की। तो इस प्रकार जो सती स्त्रियां होती है, जब उनके सतीत्व होता है तो उनमें अपार शक्ति होती है। जैसे सावित्री का कथा सुनते हैं, सीता जी और अनसुईया जी के संवाद में ये सावित्री का उल्लेख हुआ है। एक देखिए अनुकूल और प्रतिकूल का प्रसंग आप सब जानते होंगे। ये ड्रामा हुआ था हमारे मंदिर में, उसमें मैंने धृतराष्ट्र का रोल किया था तो याद है ये प्रसंग। उसमें उस ड्रामे में सबसे ज्यादा मैंने द्रौपदी की शिक्षा से बहुत प्रभावित, द्रौपदी की शिक्षा देखी। जब द्रुत क्रीड़ा खेला गया और उस द्रुत क्रीड़ा में अंततः पांचों पांडवों ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। अब देखिए इस प्रसंग को, द्रौपदी सतियों में मानी जाती है, पांच पति थे लेकिन वो द्रौपदी सती मानी जाती है। तो पांचों पांडवों का व्यवहार कितना प्रतिकूल था, कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए इतिहास में, अपना धन खो दिया, राज खो दिया, वो खो दिया, लेकिन स्त्री को दांव पर लगा देना, मतलब उन्होंने स्त्री को कितना निम्न समझा। ये व्यवहार से अगर देखें, ये व्यवहार इसमें देखिए, एक एक प्रसंग में एक एक शिक्षा लेना चाहिए। एक प्रसंग में फिर दूसरा शिक्षा आप डाल देंगे तो वो प्रसंग ठीक नहीं रहेगा। भागवतम में भी ऐसे कई प्रसंग हैं जो एक प्रसंग में आपको एक ही शिक्षा प्राप्त होता है, दूसरा शिक्षा की बोलेंगे ये तो इधर झूठा हो रहा है, नहीं वो प्रसंग दूसरा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भागवत में कश्यप जी ने दीति और अदिति दोनों को अलग अलग व्रत दिया था। दीति को पुंसवन व्रत दिया और अदिति को पयो व्रत करने को कहा, और दोनों में विशेषकर भक्ति का ही प्रावधान है, भगवान की भक्ति का प्रावधान है। और उसके पीछे ये उद्देश्य था कि दोनों के मन में कुछ देवताओं के प्रति और उसका असुरों के प्रति कुटिल भाव था कि हमारे पुत्रों को स्वर्ग का राज कैसे मिले और इन देवताओं देवता कैसे प्राप्त हो, ये अदिति का भाव था और इसके चलते पयोव्रत दिया गया। और दीति का जो भाव था वो ये था कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इन देवताओं का वध कर दे, इंद्र का वध कर दे। तो दोनों के मन में ये कलमशता थी एक प्रकार से, और कश्यप जी जानते थे कि भगवान की भक्ति के बिना ये इनका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। तो जब पुंसवन व्रत किया दीति ने, और उस पुंसवन व्रत के कारण वो जो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र के इंद्र ने वो सात टुकड़े किए, सात के फिर सात किए, 49 हो गए, वो 49 मारुत कहलाए। वे जब 49 पुत्र प्रकट हुए तो उन्होंने उनको इंद्र को दे दिया कि बेटा ले जाओ इसको, तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे साथ रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो ये असुरों के साथ रहकर बिगड़ जाएंगे, आप तुम ले जाओ। जबकि पुंसवन व्रत करने के पहले उसको इंद्र के मारने के लिए उन पुत्रों को थी। तो ये दीति का मन कैसे बदल गया, बदल गया भक्ति, वो जो व्रत किया उसके कारण उसका चित्त शुद्ध हो गया और ये भाव आया। वहीं अदिति ने जो पयोव्रत किया, तो पयोव्रत करने के बाद जब भगवान उसके सामने प्रकट हुए, तो भगवान प्रकट हुए तो भगवान अदिति बोली नहीं, लेकिन उसके हृदय में क्या बात थी वो भगवान जान गए, और जानकर अदिति से कहते हैं भगवान कि हे देवी, तुम सोच रही हो कि ये असुरों की पत्नियां किस प्रकार रोवे, मतलब असुर कैसे मारे जाए, ये संभव नहीं है। तो जब भगवान भी प्रकट हो गए और अभी तक अदिति के मन में यही भाव है कि सारे असुर मारे जाएं, तो ये दीति और अदिति के दोनों के इस एक ही भक्ति करने में दोनों के विचारों में ऐसा कैसे है, ये मेल नहीं खाता। वहां भक्ति किया तो अभी तक विचार है, वहां भक्ति किया तो विचार चला गया, शुद्ध हो गया। तो यहां पर इसलिए ऐसा है कि एक एक प्रसंग में एक एक शिक्षा होता है, अब सब शिक्षा एक प्रसंग के लिए नहीं होता है। तो यहां पर जो प्रसंग है, तो जैसे उन्होंने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, द्रौपदी को दाव पे लगा दिया और द्रौपदी को हार गए। अब समझिए स्त्री को कितना बुरा लगेगा। द्रौपदी ने प्रश्न किया था कि जाकर पूछ लो क्या मैं दाव पे लगाने के, वो जब स्वयं हार गए तो उनका अधिकार मेरे पर कैसे रहा, मैं क्या कोई इनकी कोई वस्तु हूं जो दाव पर लगा दिया गया, ये गलत था। लेकिन फिर भी जब पति ने दाव पर लगा दिया और उसके बाद जब चीररण हुआ, चीररण दुशासन नहीं कर पाया, अंत में धृतराष्ट्र को पता चल गया कि अब द्रौपदी हमको श्राप दे देगी, हमने उसके साथ जो ऐसा व्यवहार किया है, द्रौपदी परम सती है, उसके पास शक्ति है जिसके कारण उसका चीररण ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला के मुंह में फेंड आ गया, वो नहीं कर पाया, तो निश्चित इसके पास शक्ति और ये श्राप दे दी। और श्राप देने को द्रौपदी तैयार थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर विनती किया कि अरे पुत्री तुम श्राप मत देना, श्राप मत देना। तो द्रौपदी श्राप देते देते रुक गई। जिस धृतराष्ट्र ने द्रौपदी का एक बात नहीं सुना था, जो सुनने योग्य था वो नहीं सुना, और द्रौपदी ने उसका न सुनने योग्य बात सुना है। श्राप के योग्य थे ये लोग, श्राप पाने के योग्य थे, लेकिन द्रौपदी तुरंत रुक गई। जब वो रुक गई तो धृतराष्ट्र जैसा अंधा व्यक्ति भी उस पर प्रसन्न हो गया। देखिए किस प्रकार व्यक्ति, कैसे व्यक्ति को स्त्री प्रसन्न करते। वो रुक गई तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गया उस पर कि ओहो द्रौपदी कितनी महान है। और प्रसन्न ही नहीं हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि कहा कि पुत्री तुमको जो वर चाहिए मांग लो। धृतराष्ट्र के मन में था कि ये मेरे पुत्र को राज्य, मेरा पुत्र का राज्य मांग लेगी, लेकिन इतना प्रसन्न था कि जो मांगे मैं दे दूंगा। ये व्यवहार से किस प्रकार ऐसे व्यक्ति को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इतना धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गया है कि तुम जो चाहिए मांग लो। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे दो वर दो, दो वरदान दे दिए। वो कितना प्रसन्न है, द्रौपदी तो दो वरदान दे दिए। तो एक वर में उसने मांगा कि हमारे पति को मुक्त कर दो, वो गुलाम बन गए थे। तो द्रौपदी ने मांगा कि हमारे जो पति हैं उनको मुक्त कर दो। जिन पति ने द्रौपदी को दाव पे लगाया और जिसके कारण द्रौपदी की ऐसी स्थिति हुई थी, उस पति के लिए द्रौपदी कह रही है कि इनको मुक्त कर दो। एक वर मांगा। दूसरा वर, क्या द्रौपदी नहीं मांग सकती थी कि ये हस्तिनापुर का राज्य दे दो हमारे पतियों को? ये मांगती तो ये कोई पतिव्रता धर्म का पालन नहीं दिखता था। लेकिन उसने हस्तिनापुर की राजकुमारी महारानी बनना हो तो बनू, हमारे पति पहले, पति को उन्होंने महत्व दिया, हमारे पतियों को गुलामी से मुक्त कर दो। इतना ही नहीं, द्रौपदी की सतीत्वता देखिए पति के प्रति। और दूसरा वरदान मांगा, कभी इतिहास में यह शब्द नहीं आना चाहिए कि हमारे पति तुम्हारे गुलाम बने थे, यह शब्द नहीं आना चाहिए। आज तक भी प्रायः ये कोई उल्लेख नहीं होता है कहीं भी प्रवचन, ये इस प्रसंग तक सीमित रहता है। बाद में आप कहीं नहीं सुनते को वो उनके गुलाम बने थे, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए वो द्रौपदी, पति ने कैसा व्यवहार किया, द्रौपदी ने कैसा व्यवहार किया, हमारे पतियों का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो उसके इस सतीत्व धर्म से भी धृतराष्ट्र और प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा कि पुत्री और वर मांगो। खोल दिया खजाना है वो धृतराष्ट्र, जो पुत्र मोह में अंधा था, इस सती स्त्री ने ऐसे अंधे को भी कितना खोल दिया। लेकिन द्रौपदी द्रौपदी है, धर्म निष्ठा है, सती स्त्री। उसने कहा पिताश्री, स्त्री को दो ही वरदान का अधिकार है, तीन नहीं। कितनी मर्यादा में, नहीं तो काम बन सकता था तीसरे वरदान से, धृतराष्ट्र तो बिल्कुल खुले हुए थे। तो इस प्रकार द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को प्रसन्न कर दिया और अपने पतिव्रता धर्म का परिचय दिया कि स्त्री को किस प्रकार अपने सतीत्व धर्म का और अपने पति को किस प्रकार प्रतिकूल पति के साथ अनुकूल व्यवहार, यह है सतीव्रता धर्म। अभी अनुकूल है उसके साथ का तो कोई इसमें तो क्या होना प्रतिकूल को? और कोई भी स्त्री अगर पति के अनुकूल व्यवहार करे तो वो अपने पति को प्रसन्न कर सकता, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो स्त्री के ऐसा हो जाए कि मुक्त नहीं। अगर वो प्रसन्न कर ले तो फिर अपना इच्छा अनुसार उसको ढाल सकती है। इसके लिए प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य उसमें कहते, कभी कभी पति और पत्नी दोनों खींचातानी में आ जाते हैं तो वो घर गृहस्थी नरक बन जाता है और इसका परिणाम होता है डिवोर्स। तो डिवोर्स का कानून है इसलिए वो लोग सीधा कानून के पास जाते, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए पत्नी का धर्म है कि वो कोशिश करे कि एडजस्ट करके पति को संतुष्ट रखे। इस प्रकार जब एडजस्ट करके सुखी रखती है पति को तो वो घर एडजस्ट, और वो घर स्वर्ग समान हो जाता है। एक जो प्रभुपाद जी ने लिखा कि विदेशी लोग इसको गुलामी समझते हैं स्त्री की, तो प्रभुपाद जी एक बार जू बीच पर टहल रहे थे, देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी सुन, उनके साथ विदेशी भक्त रहते थे हमेशा, प्रश्न उत्तरी चलता रहता था। तो जू पर बीच पर टहल रहे थे और उनके सामने एक सेठ परिवार भी टहल रहा था, अपनी पत्नी साथ में है, बच्चे साथ में है सब। तो बच्चों को जू में उधर कुछ खरीदना होगा, आइसक्रीम या कोई सिंग दाना ऐसा खरीदना होगा, तो वो पैसे मांग रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि जाओ तुम्हारे पापा से ले लो पैसे, तो पापा के पास वो पैसे मांगने गए। तो इस पर उस विदेशियों ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि देखो भारत में स्त्रियों की कैसी स्थिति है, बिचारी की जेब में दो चार रुपया भी नहीं और सारा पैसा पति की जेब में है, ये स्थिति भारत की स्त्रियों की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम नहीं जानते हो यहां की स्थिति, पति के जेब में दो चार रुपए होंगे, दस बीस रुपए होंगे, वो पत्नी के इस कमर में वो झूरा देख रहे हो, उसमें जो चाबियां देख रहे हो वो तिजोरी की चाबी है, वो पूरी की पूरी इसके पास है, उसके जेब में तो दो चार रुपए वो तिजोरी का चाबी उसके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर वो गुलामी नहीं है, ये पतिव्रता धर्म है, स्त्रियों को भी यहां इतना ही सम्मान है, है? तो इस प्रकार गुलामी नहीं समझ। तो बहुत सुंदर श्लोक है, शिक्षा लेना चाहिए और अपने ग्रस्त जीवन को स्वर्ग बनाना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज के लिए विशेष सूचना है कि आज 3 बजे वसई में रथ यात्रा है, गोपीनाथ मंदिर के द्वारा आयोजित, वसई क्रीड़ा ग्राउंड बहुत फेमस है, स्टेशन के पास ही है, वहाँ से 3 बजे प्रारंभ होगा, तो आप सब आमंत्रित हैं उसमें। हरे कृष्ण। प्रश्न उत्तरी तो नहीं, सब उठ गए।